नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ड्रॉइंग डिजिटल लिसा बार्डोट की एक व्यावहारिक कला मार्गदर्शिका है, जो आईपैड पर डिजिटल ड्रॉइंग और पेंटिंग सीखने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध ढंग से समझाती है। इसका मुख्य संदर्भ प्रोक्रिएट है, लेकिन पुस्तक के अनेक सिद्धांत दूसरे डिजिटल ड्रॉइंग एप्स पर भी लागू होते हैं। यह केवल बटन, ब्रश और सेटिंग्स बताने वाली तकनीकी पुस्तक नहीं है। बार्डोट डिजिटल माध्यम की सुविधाओं को बुनियादी चित्रकला कौशलों जैसे अनुपात, रंग, प्रकाश, आकार और टेक्सचर के साथ जोड़ती है। पुस्तक का उद्देश्य नए कलाकार को खाली कैनवस, जटिल ऐप इंटरफेस और अपनी रचनात्मक क्षमता को लेकर होने वाले संकोच से आगे बढ़ने में मदद देना है। इसमें 12 चरण दर चरण परियोजनाएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से पाठक स्थिर वस्तुओं, प्राकृतिक दृश्यों, पात्रों और शहरी दृश्यों जैसे विषयों पर काम करता है। इस तरह यह पुस्तक एक आरंभिक पाठ्यक्रम, अभ्यास पुस्तिका और दृश्य संदर्भ तीनों की भूमिका निभाती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डिजिटल औजारों को चित्रकला की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा बनाना। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह डिजिटल उपकरणों को अलग तकनीकी बाधा मानने के बजाय चित्र बनाने की कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाती है। आईपैड और प्रोक्रिएट जैसे माध्यमों में परते, मास्क, अल्फा लॉक और ब्रश विकल्प उपलब्ध होते हैं। नए उपयोगकर्ता अक्सर इन्हें अलग अलग फीचर की सूची की तरह याद करने लगते हैं, जिससे उनकी रचनात्मक प्रक्रिया रुक सकती है। बार्डोट का दृष्टिकोण इन साधनों को उनके व्यावहारिक काम से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, परतों का उपयोग रेखाचित्र, रंग और विवरण को अलग रखने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसी एक हिस्से को बदलने पर पूरा चित्र प्रभावित नहीं होता। मास्क और अल्फा लॉक चयनित क्षेत्र में सुधार या रंग भरने को नियंत्रित करते हैं। यह नियंत्रण प्रयोग करने की लागत घटाता है, क्योंकि गलती स्थायी नहीं रहती। फिर भी पुस्तक का निहित संदेश यह है कि फीचर स्वयं कला नहीं बनाते। औजार तब उपयोगी है जब वे संरचना, रंग संबंध और दृश्य स्पष्टता को बेहतर बनाने में सहायक हो। इसलिए पाठक को ऐप की क्षमता और कलात्मक निर्णय दोनों को साथ साथ विकसित करना पड़ता है। दूसरा, 12 परियोजनाओं के माध्यम से कौशल को क्रमिक अभ्यास में बदलना। ड्रॉइंग डिजिटल का शिक्षण ढांचा परियोजना आधारित है। इसमें 12 चरण दर चरण अभ्यास है, जो केवल तैयार चित्र की नकल कराने के लिए नहीं, बल्कि अलग अलग दृश्य समस्याओं से परिचित कराने के लिए रखे गए हैं। स्थिर वस्तुओं पर काम करने से आकार, अवलोकन और वस्तुओं के आपसी अनुपात पर ध्यान जाता है। प्रकृति आधारित विषय जैविक आकृतियों, रंगों की विविधता और सतहों की बनावट को देखने का अवसर देते हैं। पात्रों और शहर दृश्यों जैसे विषयों में रूपरेखा, स्थान, वातावरण और विवरण के चयन की समस्या अधिक स्पष्ट होती है। ऐसी प्रगति उपयोगी है, क्योंकि शुरुआती कलाकार के सामने एक साथ बहुत सारी चुनौतियां रखने के बजाय अभ्यास को सीमित लक्ष्य मिलता है। प्रत्येक परियोजना में प्रक्रिया को छोटे चरणों में बांटने से यह भी समझ आता है कि प्रभावशाली डिजिटल चित्र अक्सर एक ही प्रयास में नहीं बनते। आरंभिक स्केच, मूल आकार, रंगों का व्यापक विन्यास, छाया प्रकाश और अंतिम विवरण अलग निर्णय है। पाठक इस क्रम को बाद में अपने विषयों पर लागू कर सकता है। परियोजनाएं इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे जानकारी को निष्क्रिय पढ़ने के बजाय दोहराए जा सकने वाले अभ्यास में बदलती है। तीसरा, रंग अनुपात और प्रकाश को ऐप कौशल से ऊपर रखकर सिखाना। पुस्तक की विशेषता यह है कि वह डिजिटल कला को केवल तेज उत्पादन या आकर्षक ब्रश प्रभावों तक सीमित नहीं करती। बार्डोट रंग सिद्धांत, अनुपात और रेंडरिंग जैसे बुनियादी सिद्धांतों को आवश्यक आधार मानती है। इसका व्यावहारिक कारण सीधा है। किसी चित्र में ब्रश की बनावट प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन यदि वस्तु का आकार असंगत है, रंगों का संबंध अस्पष्ट है या प्रकाश का स्रोत समझ में नहीं आता, तो परिणाम विश्वसनीय नहीं लगेगा। अनुपात का अध्ययन कलाकार को वस्तुओं और पात्रों के आकारों का संबंध देखने में सहायता देता है। रंग पर ध्यान केवल सही रंग चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि हल्के और गहरे मानों, रंगों के संतुलन तथा वातावरण बनाने में उनकी भूमिका तक जाता है। रेंडरिंग का अर्थ सतह, आयतन और प्रकाश को ऐसे संकेतों से दिखाना है कि सपाट स्क्रीन पर भी रूप का आभास हो। डिजिटल माध्यम में रंग या छाया तुरंत बदल सकना लाभ है, पर यह निर्णय लेने का विकल्प नहीं है। पुस्तक इस सुविधा को निरीक्षण और संशोधन के अवसर में बदलती है। यही संतुलन इसे उन त्वरित ट्यूटोरियलों से अलग करता है, जो केवल किसी खास प्रभाव की नकल पर केंद्रित रहते हैं। चौथा, ब्रश और टेक्सचर का चयन। सजावट नहीं बल्कि दृश्य अर्थ का निर्णय डिजिटल ड्राइंग में ब्रशों की बहुतायत अक्सर भ्रम पैदा करती है। एक ही ऐप में पेंसिल, स्याही, वाटर कलर, दानेदार और टेक्सचरयुक्त अनेक ब्रश मिल सकते हैं। ड्राइंग डिजिटल इस चुनाव को केवल शैलीगत सजावट की तरह नहीं रखती, बल्कि उसे चित्र के उद्देश्य से जोड़ती है। किसी साफ रेखाचित्र के लिए नियंत्रित स्पष्ट किनारे वाला ब्रश उपयोगी हो सकता है, जबकि प्राकृतिक सतह या ढीले रंग क्षेत्र के लिए अधिक बनावट वाला ब्रश उपयुक्त होगा। टेक्सचर वस्तु के पदार्थ जैसे पत्तियों, पत्थर या रंग की परत का संकेत दे सकता है, लेकिन अत्यधिक टेक्सचर चित्र की संरचना और मुख्य केंद्र से ध्यान हटा सकता है। इसलिए ब्रश चुनने का प्रश्न यह होना चाहिए कि वह आकृति, गहराई या माहौल को क्या योगदान देता है। पुस्तक पाठक को यह समझने की दिशा देती है कि ब्रश का गुण चित्र के हर भाग में समान रूप से लगाना जरूरी नहीं है। रेखा, रंग और विवरण के स्तरों में अलग दृश्य व्यवहार रखा जा सकता है। यह विवेक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पारंपरिक माध्यम से डिजिटल माध्यम में आए हैं और स्क्रीन पर अपने परिचित स्पर्श या सतह भाव को खोज रहे। मैं अंत में रचनात्मक संकोच को छोटे नियंत्रित निर्णयों के जरिए कम करना। लिसा बारडोट की शिक्षण पद्धति का एक केंद्रीय आयाम रचनात्मक संकोच को संबोधित करना है। पुस्तक उन पाठकों के लिए बनाई गई है जो मानते हैं कि वे पर्याप्त कलात्मक नहीं हैं या जिन्हें डिजिटल कैनवस पर आरंभ करना कठिन लगता है। इसका उत्तर केवल प्रेरक भाषा नहीं बल्कि काम को छोटे और नियंत्रित निर्णयों में विभाजित करना है। जब पाठक पहले सरल आकार बनाता है, फिर रंगों के बड़े क्षेत्र रखता है और बाद में छाया, बनावट या सूक्ष्म विवरण जोड़ता है, तो जटिल चित्र भी संभालने योग्य बनता है। डिजिटल परतों और संपादन की सुविधा इस अभ्यास को और सुरक्षित बनाती है। किसी असफल हिस्से को बदलना संभव होने से प्रयोग के प्रति प्रतिरोध कम हो सकता है। साथ ही पुस्तक प्रेरणा और व्यक्तिगत खोज के लिए स्थान देती है, इसलिए परियोजनाओं को अंतिम लक्ष्य मानने के बजाय आगे के अभ्यास का आधार समझा जा सकता है। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती चरण में कौशल और आत्मविश्वास अलग नहीं होते। बार बार पूरा किया गया छोटा अभ्यास अवलोकन, उपकरण नियंत्रण और निर्णय क्षमता तीनों को विकसित करता है। पुस्तक रचनात्मकता को जन्मजात विशेषाधिकार के बजाय सीखी और अभ्यास से मजबूत होने वाली क्षमता के रूप में प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष में, ड्राइंग डिजिटल उन शुरुआती पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्होंने आईपैड या प्रोक्रिएट लिया है, लेकिन यह नहीं जानते कि व्यवस्थित अभ्यास कहां से शुरू करें। पारंपरिक पेंसिल, रंग या वाटर कलर से डिजिटल माध्यम में आने वाले कलाकार भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह स्क्रीन आधारित औजारों को परिचित कला सिद्धांतों से जोड़ती है। कुछ अनुभव रखने वाले डिजिटल कलाकारों के लिए भी रंग, अनुपात, प्रकाश और प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों की पुनरावृत्ति उपयोगी हो सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी परियोजना संरचना में है। पाठक केवल कमांड या फीचर नहीं सीखता, बल्कि देखना, सरल बनाना, परतों में काम करना और चित्र को क्रमशः विकसित करना सीखता है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि यह डिजिटल कला के बारे में एक संतुलित समझ देती है। तकनीक गति, संशोधन और विविध दृश्य प्रभाव दे सकती है, लेकिन मजबूत चित्र का आधार अब भी अवलोकन और सोच समझकर किए गए दृश्य निर्णय है। समान श्रेणी की कई गाइड किसी एक ऐप के टूल्स या किसी खास शैली के त्वरित परिणाम पर केंद्रित होती हैं। बारडोट की पुस्तक का अंतर इसके तकनीकी और कलात्मक पक्षों के संयोजन में है। इसके जीवंत, हाथ से बनाए गए चित्र भी पाठ को सॉफ्टवेयर स्क्रीनशॉट पर निर्भर रहने से बचाते हैं, इसलिए यह केवल ऐप मैनुअल नहीं बल्कि डिजिटल चित्रकला की आरंभिक भाषा सीखने के लिए एक स्थायी अभ्यास केंद्रित संदर्भ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लिसा बारडोट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।